सोचिए एक प्राचीन ग्रंथ किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन कर रहा हो जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वो इंसान जैसा भी नहीं दिखता था।
एक ऐसा व्यक्ति जिसे समाज ने पूरी तरह से नकार दिया हो, कुचल दिया हो और एक अंधेरे कोने में भुला दिया हो।
बिल्कुल, लेकिन फिर ना इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है।
हाँ, और वो मोड़ सच में हैरान करने वाला है।
मतलब वही टूटा हुआ और अपमानित इंसान अंत में पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों को, उन बड़े बड़े घमंडी राजाओं को पूरी तरह से निशब्द कर देता है।
वो इतने अवाक रह जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता।
तो ऐसा कैसे संभव हुआ? आज के इस गहन चर्चा में हम इतिहास की सबसे रहस्यमयी और दर्दनाक कविताओं में से एक की तह तक जाने वाले हैं।
और इसके लिए हम डॉक्टर रॉबर्ट चिशोलम के उस शोध के पन्नों को खंगालेंगे जो आइजाया के सर्वेंट सॉन्ग्स यानी आइजाया के सेवक गीतों पर आधारित है।
हाँ, तो जो लोग इस विषय को थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें याद होगा कि इन गीतों की शुरुआत में इस सेवक को एक महान न्यायकर्ता के रूप में दिखाया गया था।
सही कहा, वो एक नए मूसा की तरह था जो दुनिया को अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने वाला था।
एक ऐसा विजेता जिसके हाथों में न्याय की कमान है। लेकिन आज की हमारी इस बातचीत का केंद्र वो बिंदु है जहां ये विजय गाथा अचानक एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाती है।
एक ऐसा सफर जो सफरिंग सर्वेंट यानी पीड़ा सहने वाले सेवक की कहानी है।
तो मेरा सवाल ये है कि ये महान विजेता अचानक इतना असहाय कैसे हो गया?
असल में एक बहुत ही बेचैन करने वाला बदलाव है और यहीं से इस पूरी कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। मतलब अक्सर जब हम किसी रक्षक या मसीहा की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में एक योद्धा की तस्वीर उभरती है ना?
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा योद्धा जो अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही धूल चटा दे।
एकदम सही, लेकिन डॉक्टर चिशोलम का शोध बताता है कि इस तीसरे गीत तक आते आते ये सेवक एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर चल पड़ता है।
अलग रास्ता कैसे?
उसे एक पैगंबर के रूप में पेश किया गया है और पाठ कहता है कि उसे एक सीखने वाले की जीभ दी गई है।
एक सीखने वाले की जीभ?
हाँ, वो हर सुबह एक छात्र की तरह ईश्वर से सुनता है ताकि वो थके हुए और टूटे हुए लोगों को अपने शब्दों से सहारा दे सके।
एक मिनट रुकिए, सीखने वाले की जीभ, मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ।
अच्छा बताइए क्या उलझन है?
अगर वो तारणहार है जो दुनिया को बचाने आया है तो उसे कुछ सीखने की क्या जरूरत है? उसे तो सर्वज्ञानी होना चाहिए ना?
यही तो विरोधाभास है, ये उसकी गहरी विनम्रता को दर्शाता है। वो कोई ऐसा तानाशाह नहीं है जो आसमान से आदेश बरसा रहा हो।
ओ, तो वो लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, वो मानवता के दर्द को समझने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाता है, वो सुनता है। लेकिन विडंबना देखिए,
क्या
वो जिन लोगों की मदद करने, जिन्हें सहारा देने आया है, वही लोग उस पर टूट पड़ते हैं।
अरे बाप रे,
यहीं पर पहली बार सीधे तौर पर उस शारीरिक यातना का उल्लेख मिलता है जो आगे चलकर ईसा मसीह के परीक्षणों की याद दिलाती है।
हाँ, और वो यातना कोई साधारण विरोध नहीं है। मैंने जो मूल पाठ पढ़ा है ना, उसमें जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
बहुत ही विचलित करने वाला है।
सेवक खुद कहता है कि उसने अपनी पीठ उन लोगों के सामने कर दी जो उस पर वार कर रहे थे, उसने अपनी दाढ़ी नोचने दी,
और जब लोग उसका अपमान कर रहे थे, उस पर थूक रहे थे, तो उसने अपना चेहरा नहीं छुपाया।
अब ये बात मेरे गले नहीं उतरती। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कहानी का वो रक्षक जो लोगों को बचाने निकला है
और सबसे पहले वही लोग उस पर सबसे क्रूर हमला कर देते हैं।
हाँ, लेकिन वो पलटवार क्यों नहीं कर रहा? एक असली मसीहा तो अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें वही रोक सकता था ना। कोई अपनी मर्जी से अपना इतना भयानक अपमान क्यों सहेगा?
क्योंकि अगर वो पलटवार करता तो वो उसी हिंसा के चक्र का हिस्सा बन जाता जिसे वो खत्म करने आया था।
ये तो सोचने वाली बात है।
ये उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि उसका एक बहुत ही सधा हुआ फैसला है। अगर हम इस घटना के पीछे के मनोविज्ञान को समझें तो इसका जवाब सेवक के उस अटूट विश्वास में छिपा है।
एक ऐसा विश्वास जिसे हिलाया नहीं जा सकता।
बिल्कुल, वो जानता है कि अंतिम फैसला दुनिया की अदालत नहीं बल्कि ईश्वर करेगा। वो इस बात को लेकर पूरी तरह अड़िग है कि अंततः ईश्वर उसका पक्ष लेगा।
मतलब ईश्वर उसे सही साबित करेगा, विंडिकेट करेगा।
हाँ, और जो लोग आज उस पर थूक रहे हैं, अपनी मर्जी की आग जलाकर चल रहे हैं, उन्हें एक दिन यह एहसास होगा कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे।
तो अगर वो इतना सब सहने को तैयार है और उसे पूरा विश्वास है कि वो सही साबित होगा, तो इस पूरी यातना का अंतिम परिणाम क्या होगा?
यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है।
क्योंकि सिर्फ मार खाना तो कोई महानता नहीं है, है ना? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। यहीं पर अध्याय 52 की शुरुआत होती है, जो असल में चौथे गीत का हिस्सा है।
बिल्कुल। और इस अंतिम परिणाम को समझने के लिए डॉक्टर चिशोल में एक बहुत ही रोचक साहित्यिक ढांचे की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं,
जिसे इंक्लूसियो कहा जाता है, राइट?
हाँ, इंक्लूसियो। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत ही खास पेंटिंग के दोनों तरफ एक ही तरह का शानदार फ्रेम लगा हो।
अच्छा, फ्रेम की तरह।
हाँ, इस अगले हिस्से की शुरुआत में और इसके बिल्कुल अंत में कथावाचक पीछे हट जाता है और सीधे ईश्वर खुद बोलना शुरू करते हैं।
अरे वाह, मतलब कहानी कहने का तरीका ही बदल जाता है
एकदम।
और दोनों ही जगह ईश्वर एक ही बात की घोषणा कर रहे हैं, इस सेवक की अंतिम सफलता और उसका अप्रत्याशित उत्थान।
और वो उत्थान कोई ऐसा वैसा नहीं है। मैंने देखा कि हिब्रू पाठ में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे सच में ध्यान खींचते हैं।
बहुत ही एम्फैटिक या जोरदार शब्द है। वहाँ तीन अलग अलग क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है ऊपर उठना, ऊंचा होना और महान होना। और उस पर जोर देने के लिए एक शब्द जोड़ा गया है, मेओड।
मेओड, जिसका सीधा सा मतलब है बहुत अधिक,
मतलब उसे इतना ऊंचा उठाया जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन उस महान उत्थान से ठीक पहले उसके दर्द की जो तस्वीर उकेरी गई है वो बहुत ही भयानक है।
वो दृश्य इतना दर्दनाक है कि लोग उसे देखकर डर गए थे। पाठ बताता है कि उसका रूप इतना विकृत हो गया था कि वो इंसान जैसा भी नहीं लग रहा था।
मतलब उसकी पहचान ही मिट गई थी।
हाँ, ये कोई आम मारपीट नहीं थी। यहाँ शोधकर्ता मेल गिब्सन की फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का भी संदर्भ देते हैं।
ओम, वो फिल्म तो सच में बहुत ग्राफिक थी।
बिल्कुल, ताकि हम उस क्रूरता की गहराई को समझ सकें। ये एक ऐसा शारीरिक उत्पीड़न था जहाँ इंसान का मांस फट जाता था, हड्डियां दिखने लगती थी।
हे भगवान।
लोग उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते थे क्योंकि वो दृश्य बर्दाश्त के बाहर था। एकदम सही। और यहीं पर भाषा और अनुवाद की एक ऐसी बहस सामने आती है जो पूरी तस्वीर को दो अलग अलग दिशाओं में ले जाती है।
हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। पाठ में एक जगह अनुवाद को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है, है ना?
हाँ, सिंटैक्स को लेकर एक उलझन है। पारंपरिक अनुवाद कहता है कि वो राष्ट्रों को स्प्रिंकल करेगा।
स्प्रिंकल यानी जैसे कोई पुजारी वेदी पर खून छिड़क कर लोगों को शुद्ध करता है, वैसे ही वो दुनिया के पाप धोएगा।
बिल्कुल, एक पुजारी की तरह। लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका सही अनुवाद स्टार्टल होना चाहिए।
स्टार्टल यानी वो दुनिया को चौंका देगा, झकझोर देगा। अब मैं यहाँ थोड़ी उलझ रही हूँ।
बताइए क्या?
सिर्फ एक शब्द के अनुवाद से पूरी तस्वीर बदल रही है। क्या वो पुजारी की तरह दुनिया को शुद्ध कर रहा है या दुनिया के राजाओं को एक जोरदार झटका दे रहा है?
यह अनुवाद की कोई छोटी मोटी बहस नहीं है, बल्कि पूरी कहानी के प्रभाव को तय करने वाला बिंदु है।
तो दोनों में से कौन सा सही लगता है?
अगर हम स्प्रिंकल को माने तो ये सेवक की एक नई भूमिका को सामने लाता है। वो सिर्फ पीड़ित नहीं है बल्कि एक महायाजक बन जाता है जो अपने ही खून से लोगों को पवित्र कर रहा है।
ओके, लेकिन स्टार्टल्ड का क्या?
अगर हम इस पूरे वाक्य के संदर्भ को देखें तो स्टार्टल्ड यानी चौंका देना ज्यादा सटीक और नाटकीय रूप से फिट बैठता है।
वो कैसे?
सोचिए, जिन राजाओं ने उसे कीड़े मकोड़े की तरह महत्वहीन समझा था, जो सोच भी नहीं सकते थे कि ये कुचलावा व्यक्ति कोई अहमियत रखता है, जब वे अचानक उसे ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पद पर बैठे देखेंगे तो क्या होगा? वे शाब्दिक रूप से अवाक रह जाएंगे।
पाठ कहता है कि वे अपना मुंह बंद कर लेंगे।
बिल्कुल, उनके पास कहने को एक शब्द नहीं होगा।
जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पोंटियस पिलाट, हेरोदेस या उस दौर के कोई भी शक्तिशाली शासक जो अपनी सत्ता के नशे में चूर थे।
हाँ, वे अचानक देखते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने कचरे की तरफ फेंक दिया था वही पूरी सृष्टि का शासक है।
सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है,
वो क्या?
दुनिया के शासक इतने हैरान क्यों थे? क्योंकि किसी ने भी, यहाँ तक कि उसके अपने लोगों ने भी, उस सेवक में ऐसी महानता की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा क्यों हुआ कि लोगों ने उसे इतना गलत समझा?
और यहीं से कहानी का सबसे दुखद और मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। अब तक कथावाचक बोल रहा था, लेकिन अब ईसाया 53 में अचानक हम का दृष्टिकोण शुरू होता है।
हम मतलब वी।
हाँ, ये हम वो आम जनता हैं, वे लोग हैं जो उस घटना के चश्मदीद थे। वे खुद अपनी हैरानी और अपनी गलती व्यक्त कर रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया।
असल में वे लोग ईश्वर की शक्ति की उम्मीद कर रहे थे, जिसे उन्होंने प्रभु की भुजा कहा,
आर्म ऑफ द लॉर्ड।
तो प्राचीन संदर्भ में इसका मतलब तो कुछ और ही होता था ना?
बिल्कुल, जब कोई प्रभु की भुजा कहता था तो उसका मतलब एक भयंकर सैन्य शक्ति से होता था, एक ऐसा शूरवीर जो आसमान से उतरे, जिसके हाथों में तलवार हो,
जो उनके सारे दुश्मनों का नामो निशान मिटा दे। पर उन्हें कोई सैन्य योद्धा तो नहीं मिला?
नहीं मिला। उन्हें क्या मिला? एक ऐसी कमजोर जड़ जो किसी सूखी बंजर जमीन से संघर्ष करते हुए निकल रही हो,
एक ऐसी टहनी जिसमें कोई राजसी आकर्षण नहीं था, कोई भव्यता नहीं थी जिसे देखकर लोग कहें हाँ ये है हमारा मसीहा।
लोग तो किसी सुपर हीरो की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति तो बिल्कुल साधारण बल्कि उससे भी गया गुजरा लग रहा था।
पाठ कहता है कि उसे तुच्छ समझा गया और लोगों ने उससे अपना मुंह फेर लिया। और यहाँ पर बीमारी का जो रूपक इस्तेमाल हुआ है वो बहुत गहरी बात कहता है।
एकदम सही। प्राचीन समय में, और सच कहें तो बहुत हद तक आज भी, लोग बीमारी, दुख और शारीरिक पीड़ा को सीधे तौर पर इंसान के कर्मों और पापों से जोड़कर देखते थे,
जैसे जॉब या अय्यूब की कहानी में हुआ था।
बिल्कुल। शोधकर्ता यहाँ अय्यूब की प्राचीन कहानी का ही उदाहरण देते हैं। जब अय्यूब पर अचानक भयानक मुसीबतें आईं, उसने अपना परिवार खो दिया, उसे गंभीर बीमारियां हो गईं,
तो उसके अपने दोस्तों ने तुरंत मान लिया कि अय्यूब ने जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा।
हाँ, कोई ऐसा अपराध जिसे वो छुपा रहा है और इसीलिए ईश्वर उसे ये भयानक सजा दे रहे हैं, शायद कुष्ठ रोग जैसी कोई बीमारी।
कुछ ऐसा ही इस सेवक के साथ हुआ। लोगों ने उसकी यातना, उसके घावों को देखा और उनके दिमाग ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाल लिया
कि ये आदमी पापी है, ईश्वर इससे नाराज हैं और इसे इसके कर्मों की सजा दे रहे हैं।
ये मानसिकता आज भी हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है, है ना? हम आज भी मानते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसे हम कर्मा कहते हैं।
बिल्कुल।
अगर किसी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो लोग अक्सर दबी जबान में कहते हैं जरूर पिछले जन्म का कोई पाप होगा। क्या उस दौर के लोगों की यही कर्मा वाली मानसिकता इस सेवक की सच्चाई न देख पाने का सबसे बड़ा कारण थी?
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। उनकी धार्मिक सोच ये थी कि ईश्वर हमेशा अच्छे लोगों को इनाम और बुरे लोगों को तुरंत सजा देते हैं,
तो उन्होंने बस बाहरी आवरण देखा, उसका दर्द देखा और मान लिया कि वो बुरा है।
यहाँ जो बात सबसे ज्यादा झुकझोरने वाली है वो यह है कि वे लोग इस बात में बिल्कुल सही थे कि ये भयानक पीड़ा पाप का ही परिणाम थी।
एक मिनट, सही थे?
हाँ, लेकिन वे ये समझने में पूरी तरह विफल रहे कि वो पाप किसका था। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे दुखद गलतफहमी थी।
उन्होंने सोचा कि वो अपने पापों की सजा भुगत रहा है, जबकि असलियत कुछ और ही थी।
और फिर जब ये गलतफहमी अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब अचानक एक ऐसा खुलासा होता है जो जमीन खिसका देता है।
एक ऐसी स्वीकारोक्ति सामने आती है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देती है ना?
हाँ, वो हम कहने वाला समूह जो अब तक उसे पापी मान रहा था, अचानक अपनी सबसे बड़ी गलती मान लेता है।
और यहीं पर सब्स्टिट्यूशनरी अटोनमेंट यानी स्थानापन्न प्रायश्चित का वो महान सिद्धांत उभर कर आता है, मतलब एक की जगह दूसरे का बलिदान।
बिल्कुल। वो भीड़ अचानक ये भयानक सच स्वीकार करती है कि हमने सोचा था कि ईश्वर उसे मार रहा है, लेकिन वास्तव में उसने हमारी बीमारियां और हमारे दर्द उठाए थे।
मूल पाठ में पेशा नामक हिब्रू शब्द का बहुत गहराई से इस्तेमाल हुआ है। मैंने पढ़ा था कि इसका अर्थ कोई छोटी मोटी गलती नहीं है।
नहीं, पेशा का मतलब है जानबूझकर किया गया विद्रोह। सेवक को उनके उस विद्रोही स्वभाव के कारण कुचला गया था।
और इसके बदले में लोगों को क्या मिला? उन्हें मिला शालोम।
शालोम, जिसका अर्थ सिर्फ शांति नहीं बल्कि पूर्णता, चंगाई और जीवन का संतुलन है।
ये विचारी अपने आप में कितना भारी है कि सजा किसी और ने काटी और रिहाई का फरमान किसी और के हाथ में थमा दिया गया।
सच में। और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही ज्वलंत है।
आप भटकती हुई भीड़ और शिकारी वाले रूपक की बात कर रहे हैं न?
हाँ, पाठ कहता है हम सब भीड़ों की तरह भटक गए थे, हम में से हर एक अपने ही मनमाने रास्ते पर चला गया था।
इस रूपक की गहराई सच में कमाल की है। प्राचीन इसराइल के लोग चरवाहे थे, वो भेड़ों के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे।
भेड़ों के पास अपना बचाव करने का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं होता, न तेज दांत, न पंजे, न दौड़ने की रफ्तार।
तो जब वे झुंड से अलग होकर भटक जाती हैं, तो वे शिकारियों के लिए सबसे आसान निवाला बन जाती हैं।
बिल्कुल। शेर, भेड़िया या भालू आसानी से उन्हें फाड़ सकते हैं। यहाँ वो शिकारी कोई जानवर नहीं बल्कि हमारा अपना पाप, हमारा अपना विद्रोह है।
और इसका विनाशकारी परिणाम, हमारे भटकने की वजह से हम सीधे उस शिकारी के जबड़े के सामने आ गए थे जहां हमारा अंत निश्चित था।
एकदम सही।
तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक या अमूर्त बोझ नहीं था जो उस सेवक पर डाल दिया गया, ये तो बिल्कुल वैसा दृश्य है जैसे एक खूंखार जानवर, एक भेड़िया हमें फाड़ने के लिए हमारी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था
और हम डर से जमे हुए थे।
हाँ, और ठीक उसी पल उस सेवक ने खुद को हमारे और उस खूंखार जानवर के बीच में ला खड़ा किया। उसने हमारे हिस्से का वो जानलेवा हमला सीधे अपने ऊपर ले लिया।
बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। ईश्वर ने उस पाप रूपी शिकारी को उन भटकती हुई असहाय भेड़ों पर हमला करने से रोक दिया और उसे उस सेवक पर टूट पड़ने दिया।
उसने हमारी खातिर खुद को छिन्न भिन्न होने दिया।
और यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ में हम सब यानी ऑल ऑफ अस शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है।
इसका मतलब है कि ये महान बलिदान किसी एक छोटे चुने हुए समूह के लिए नहीं था।
नहीं, ये उन सब के लिए था जो भटक गए थे। उसने बिना किसी भेदभाव के वो प्रहार अपने ऊपर ले लिया।
लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा सन्न कर दिया वो ये है कि उसने ये सब कैसे सहा। श्लोक कहता है कि उसे सताया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने अपना मुंह तक नहीं खोला।
वो बिल्कुल एक ऐसे मेमने की तरह था जिसे कतरने या मारने के लिए ले जाया जा रहा हो।
जब शासकों ने, उन क्रूर सिपाहियों ने उस पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी तो वो पूरी तरह चुप रहा। उसने अपने बचाव में एक शब्द नहीं कहा।
जो कि बहुत अस्वाभाविक है।
मतलब कोई भी आम इंसान दर्द में चीखता है, गालियां देता है, रहम की भीख मांगता है, लेकिन वो मूक रहा।
और उसकी यही खामोशी उसके सर्वोच्च बलिदान की सबसे बड़ी ताकत है। वो मूक इसलिए नहीं था कि वो कमजोर था या डर गया था।
तो फिर क्यों?
वो मूक इसलिए था क्योंकि वो पूरी तरह से जानता था कि वो क्या कर रहा है। ये स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उठाया गया कदम था।
वो उस बहुत बड़ी योजना का हिस्सा था जिसे ईश्वर ने पहले ही घोषित कर दिया था, है ना?
बिल्कुल। वो जानता था कि ये चीखने, चिल्लाने या खुद को सही साबित करने का समय नहीं है। ये दर्द, ये खामोशी, ये सब उस महान उत्थान की नींव रख रहा था जो दुनिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।
जब लोग अंततः ये समझते हैं कि उनके जीवन की, उनकी आजादी की कीमत किसी और के खून से चुकाई गई है, तो वो एहसास उन्हें पूरी तरह से बदल देता है।
एकदम सही बात है।
तो इस लंबे और गहरे सफर के बाद सवाल ये है कि इस सबका हमारे लिए अर्थ क्या है। आज हमने जो भी पन्ने पलटे वे महज किसी प्राचीन दर्द या क्रूरता की दास्तान नहीं है।
नहीं, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी की कहानी है।
एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान की कहानी है जो बिना किसी मजबूरी के पूरी तरह अपनी मर्जी से दिया गया। और अंततः ये एक ऐसे अभूतपूर्व उत्थान की कहानी है जिसने पूरी दुनिया के शक्तिशाली लोगों को अवाक कर दिया।
बिल्कुल। और ये हमें हमारे अपने रोजमर्रा के दृष्टिकोण पर भी सोचने को मजबूर करता है। हम आज के समाज में कितनी जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं ना?
बहुत जल्दी। किसी की कमजोरी, किसी के खराब हालात या उसके बाहरी रूप को देखकर हम तुरंत एक धारणा बना लेते हैं।
हम भी प्राचीन काल के उन लोगों की तरह व्यवहार करते हैं जो किसी का दुख देखकर तुरंत फैसला सुना देते हैं कि जरूर इसी की गलती होगी।
हम ये देखने की कोशिश ही नहीं करते कि उस कमजोरी या उस पीड़ा के पीछे कितना बड़ा रहस्य या कितना बड़ा त्याग छिपा हो सकता है।
सही कहा।
हम अक्सर किताब को उसके कवर से आंखने की भूल कर बैठते हैं और कभी कभी वो कवर बहुत ही खुरदुरा और बदरंग होता है।
लेकिन अंदर की कहानी पूरी दुनिया बदल सकती है।
बिल्कुल। आज हमने जिन विचारों को खंगाला वे हमें बताते हैं कि उस सेवक ने हमारे पापों रूपी शिकारी का जानलेवा हमला खुद पर ले लिया और खामोशी से सब कुछ सह लिया। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूं कि हर कोई इस एक विचार पर गहराई से सोचे। जरा कल्पना करें उन घमंडी राजाओं की।
वे शासक जो अपनी रेशमी पोशाकों और सोने के मुकुटों में सजे थे,
जिन्होंने उस सेवक को महज एक कुचला हुआ, खून से सना हुआ और तुच्छ इंसान मानकर ठुकरा दिया था। जब वे पहली बार मौत और समय की सीमाओं के पार उसी सेवक को इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए देखेंगे, तो उनके मन में उठने वाला सबसे पहला विचार क्या होगा? क्या उस सेवक की वो एक पल की खामोशी, वो बिना कुछ कहे सब सह लेने वाला मूक बलिदान, उन राजाओं के पूरे अस्तित्व और उनके घमंड को हमेशा हमेशा के लिए नहीं झकझोर देगा?